ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ
ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಸುನ್ ಕೆ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. एक बार सब लोग बोलिए, सब 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 कुछ छोड़ के बोलिए, एकदम प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮದನ್ ಮುರಾರಿ ಜಿ ದೇಖ ನಾ ಬಾಹರ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಛ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ಕಿ ಧ್ಯಾನ್ ಕಿ ವಿನಂತಿ ಹೈ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜಿ ಕೋ ಹಮ್ನೆ ಅಭಿ ಘರ್ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. जगन्नाथ, और हो सके तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में कर दीजिए ताकि कथा में बीच में व्यवधान ना आ जाए, है ना. तो जगन्नाथ कौन है? जगत के नाथ, द ओनर ऑफ द वर्ल्ड, ओनर ऑफ द क्रिएशन. जितना भी निर्माण किया है सब कुछ के स्वामी भगवान जगन्नाथ है. और बलदेव जी कौन है? उनके छोटे भाई हैं और वो भी भगवान हैं. सुभद्रा जी कौन है? उनकी बहन है. हरे कृष्णा. भारतवर्ष का यही भाग्य है कि भारतवर्ष सबको पता होता है ये कौन है. अमेरिका में पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या जगन्नाथ कौन है. ये हमारा भाग्य है, हमारा जन्म जो है बहुत भाग्यशाली है. भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार. ये भूमि जो है बहुत पावन भूमि है, इसमें अनंत भगवान के अनंत अवतारों ने जन्म लिया है, मतलब लीला करने के लिए. और इसमें भगवान के अनंत संतों ने भी जन्म लिया है. सो भगवान के अनेक अवतारों के चरण धूलि से और भगवान के अनेक भक्तों के चरण धूलि से हमारी भूमि जो है वो पावन हो गई है. और इसमें अगर जन्म लेना है तो कई जन्मों तक पुण्य करना पड़ता है, तो उसके बाद में यहाँ पर जन्म मिलता है. तो आप लोग सब लोग बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि आप भारत भूमि में जन्म लिए हुए हो. लेकिन जन्म लेने के बाद में क्या करना है? आफ्टर यू गेट द प्रिविलेज व्हाट नेक्स्ट? जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार. खुद का जन्म जो है वो सार्थक करना है और दूसरों का भी उपकार करना है. खुद का जन्म सार्थक करने का मतलब ये होता है कि खुद को भगवान के चरणों में अर्पण करना है, अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने कर्मों को, सब चीज़ों को भगवान के चरणों में अर्पण करना है. तो हमारा जीवन जो है हम सार्थक कह सकते हैं, परिपूर्ण कह सकते हैं. नहीं तो फिर क्या हुआ? जन्म तो मिला, उसके बाद में लाभ क्या है? कुछ भी नहीं है. उसके बाद वही कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं. जानवर क्या करते हैं? खाते हैं खाना. आहार, फिर क्या करते हैं निद्रा, सो जाते हैं, फिर मैथुन यानी कि नर मादि एकत्र होकर बच्चे पैदा करते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि संकट आएगा तो रक्षा करते हैं, आहार निद्रा मैथुन और भय सुरक्षा, ये चार काम करते रहते हैं। और हम लोग भी वही काम करेंगे तो हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं बचता है, हमारे उनमें वही अंतर है, जीव माइनस भगवान इज इक्वल टू एनिमल। जीव से अगर भगवान की भक्ति निकाली जाए, जीव के जीवन से, तो उसे जानवर कहते हैं, और जब भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं हम मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य बनने के बाद भक्त बन जाते हैं, और भक्त बनने के बाद में भगवान के धाम में हमको प्रवेश मिलता है। तो संक्षेप में ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, चाहे हम गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, हाँ मलयाली हो, तेलुगु हो, है तो मनुष्य, जिसको मन होता है उसको मनुष्य कहते हैं। और मन होने का मतलब क्या है, भावना होती है उसके अंदर, विचार होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, अनुभव होते हैं। तो जब ये विचार और ये भावना और ये फीलिंग्स ये सब भगवान के बारे में होती है तो मनुष्य होने का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो जाता है। द पर्पज ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन बींग इज कम्प्लीटेड वेन यू थिंक फील एंड डिज़ायर फॉर द लॉर्ड। तो भगवान के लिए इच्छा करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में अनुभूति करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो मनुष्य कहलाने लायक है। अदरवाइज मन तो जानवरों को भी है, लेकिन वो हमेशा क्या खाए, कहाँ सोए, कहाँ मादी को ढूंढे, कहाँ रक्षा करें, बस यही सोचते रहते हैं। अगर हम लोग भी वही सोचते रहेंगे तो हम लोग भी वैसे ही रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है ऐसे लोगों को द्विपद पशु, दो पैरों के पशु कहा गया है। तो हमको वो नहीं बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है। तो हमारी उम्र ज़्यादा है, छोटी है, जवान है, हाँ महानंदा कितना उम्र है आपका, 11 ईयर्स, भक्त है भगवान का, भगवान का नाम पुकारता है रोज, जप करता है, यही हमारे जीवन का पर्पस है। अरे 11 साल क्यों, माता के गर्भ से ही जप करना है, तो माता भक्त रहेगी, वो गर्भवती हो जाएगी, वो जप करेगी तो बालक भी जप करेगा, बालक वही करता है जो माता करती है, वही फिल्मी गाने गुनगुनाता है जो माता ने गुनगुनाया था। हाँ हमारा भी ऐसा ही हाल है, जब गणपति में नवरात्रि में जो फिल्म गाना बजता है हमको पसंद नहीं है वो, लेकिन 10 दिन लगातार बजने के बाद में हम भी गुनगुनाने लगते हैं, खाना बनाते वक्त, तड़का लगाने वक्त, है ना, ये हमारी कंडीशनिंग है। ये सब बदल के हमको भगवान के बारे में सोचना है, इसलिए उसमें से कई चीज़ों में से एक कार्य है भगवान को घर में स्वागत करना। वो कई चीज़ें क्या है, वो कई चीज़ें मतलब एक है भगवान के नाम का जप, सर्वश्रेष्ठ नंबर पर है वो, अव्वल नंबर पर, टॉप नंबर पर क्या है, भगवान के नाम का जप। दूसरा है भगवान के भक्तों का संग, हम लोग सब दुनिया के लोगों को मिलते रहते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ के फैशन की बातें करते हैं, फिल्मों की बातें करते रहते हैं। सत्संग का मतलब है कि साथ में आकर भगवान के विषय में बात करना, भगवान के विषय में चर्चा करना। बाकी भक्त लोग सब तिलक लगा के आए हैं, सब लोग फिल्मों की बातें कर रहे हैं, तो वो सत्संग नहीं होता है। सत में किया हुआ संग को सत्संग कहते हैं, और सत मतलब भगवान, तो दूसरा हो गया सत्संग, और तीसरा हो गया भगवान के विग्रहों की पूजा, चौथा हो गया श्रीमद् भागवत का पठन। थोड़े श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा जिसमें दी गई है, भगवान का चरित्र जिसमें वर्णन किया गया है, उसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। कई प्रकार की कथाएं हैं, जगन्नाथ लीला है, राम लीला है, कृष्ण लीला है, हाँ कई प्रकार की गौर लीला है चैतन्य महाप्रभु की, तो उनका नित्य नियम से पाठ करना। और पाँचवा क्या है, भगवान के धाम में जाकर निवास करना, रोज नहीं साल में एक बार जब समय मिलेगा तब भगवान के धाम में जाके वहाँ पर निवास करना, वहाँ पर भक्तों के संग में जाकर अच्छे अच्छी जगह जहाँ पर भगवान ने सुंदर सुंदर लीला किया है उसका दर्शन करना, उसके बारे में सुनना, वहाँ का प्रसाद लेना, वहाँ पर थोड़ा सा दान धर्म करना भगवान की सेवा के लिए, और कुछ दिन भगवान के संग में ही बिताकर फिर लौट के आना। फिर वहाँ पर और कुछ करना नहीं है, सुबह 9 to 5 बिजनेस नहीं करना है, वहाँ पर सब कुछ छोड़ के दुकान बंद करके जाना है, और केवल सुबह शाम भगवान के विचार में मग्न रहना है। वो हो गया धाम निवास यानी यात्रा। और छठवा है तुलसी देवी की पूजा करना। ऐसे 6 इंपॉर्टेंट तत्व बताए गए हैं, वैसे तो 64 है, लेकिन 64 में से 6 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एक है जो आप हमें आज कर रहे हैं, मैं भगवान को घर में आह्वान कर रहे हैं, प्लीज़ कम हमारे घर में निवास कीजिए। हाँ आपके घर में नाम तो किसी का होगा, वो स्टैम्प ड्यूटी के पेपर में होगा ना, हाँ नेम होगा ना, गवर्नमेंट रजिस्टर किया होगा आपने, वो तो सबका होता है। लेकिन भावना क्या होनी चाहिए, भले ही मेरा नाम गवर्नमेंट रजिस्टर किया होगा लेकिन ये घर उनका है, स्वामी मैं नहीं हूँ, भले मेरा नाम होगा, स्वामी मेरे नाथ हैं श्री कृष्ण भगवान। मैं घर जा से घर से बाहर रहूँगा काम करने के लिए, उनको ही प्रणाम करके जाऊँगा, आपके लिए ही जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, लौट के आऊँगा, जो भी धन आएगा वो उनकी सेवा में लगाना है, जो भोजन कमाऊँगा उनको अर्पण करना है, उनका प्रसाद लेना है और लोगों को देना है, फिर शाम को बैठकर उनकी कथा सुननी है। कितना सुंदर कल्चर है हमारा, हर रोज, मेरे जन्म के समय की भी बात है, बात दूर की बात नहीं है, हर शाम को लोग खेती से आते थे, नौकरी से आते थे, अच्छा हाथ पांव धो के बैठते थे भगवान के सामने और कथा सुनते थे, प्रभु राम की, प्रभु जगन्नाथ की, श्री कृष्ण की, राधा रानी की, फिर प्रसाद पाते थे, आरती करते थे, सो जाते थे। 1973 में बहुत बड़ी दुर्घटना घटना हो गई, क्या हो गई, वो टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न 73 में, जब मैं 5वीं में था, हाँ तब रामायण की जगह पर टेलीविज़न स्वामी आ गए और उनमें जो जो दिख रहा है उसकी कथा होने लगी, एकदम आतुरता से सब लोग, पर टाइम पर लेके बैठते थे, तब 5 बजे शुरू होता था और 10 बजे बंद होता था, लेकिन इतनी प्रगति हो गई कि 24 आवर्स चलता है अभी, तभी एक ही था, अभी 250-300 चैनल चालू हो गए हैं, क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ, उसमें झगड़ा चलता है। लेकिन दुर्घटना क्या हुई, उसके आने से प्रभु राम बाहर चले गए, मतलब निकाला गया उनको, प्रभु राम का जो वास्तव्य था घर में, निवास था, समाप्त हो गया। बड़ी आतुरता से लोग उसके सामने बैठने लगे, उसमें क्या क्या चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, ट्रायंगुलर अफेयर चल रहा है, खून खराबा चल रहा है, हाँ क्या, ऑल नॉनसेंस थिंग्स, वो सब बड़े चाव से देखते हैं, फिर वही मन में विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वही मन में मन को गंदा कर देता है, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे बातें करते हैं, वैसे कार्य करते हैं, फिर जीवन का जो है अधः पतन, यानी कि फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ का जन्म का मतलब क्या है, जन्म सार्थक कोरी, जब हम अपने जन्म को, मेन उद्देश्य क्या है, भगवान का भजन करना, और शरीर को चलाने के लिए फिर नौकरी करना है, डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई कुछ और करना है, ये केवल मशीन को चलाने के लिए है, यही, इसके लिए हम लोग जन्म नहीं लिया है, वी हैव नॉट टेकन बर्थ जस्ट टू अर्न मनी। तो बाय द वे मशीन को चलाना है इसलिए काम भी करना पड़ता है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना है। जैसे हम पुना जा रहे हैं, मुझे यहाँ से तो बीच में एक स्टेशन आता है करजत, तो खासियत क्या है उसकी, करजत की खासियत क्या है, सब लोग उतरते हैं बटाटा वड़ा खाने के लिए, है ना, और समझो बटाटा वड़ा खाने में इतने मशगूल हो गए ट्रेन निकल गई, ऐसा ही हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। जा रहे थे पूना में, बीच में बटाटा वड़ा के चक्कर में फंस गए, ट्रेन छूट गई हमारी। जन्म लिया हमने भारत भूमि में भगवान को प्राप्त करने के लिए, 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद, पीड़ा भोगने के बाद, वेदना भोगने के बाद, एक मौका मिलता है मनुष्य जन्म का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी हमको भगवान को मिलना है, हु इज़ ही, मैं कौन हूँ, वो कौन है, मेरा उनका रिश्ता क्या है, अगर रिश्ता है तो कैसे उसको वापस इस्टेब्लिश करना है, कैसे उनकी प्राप्ति करना है, ये प्रश्न मनुष्य जीवन के हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी बीवी शादी करनी है, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, भगवान कौन है, मेरा उनका रिश्ता क्या है, और वो कैसे अभी इस पे बनाना है रिश्ता, और निभाना कैसे है, उसमें कैसे परिपूर्ण होना है, इसलिए हमने जन्म लिया है। चाहे आप अमेरिकन हो, इंडियन हो, स्पेनिश हो, यूरोपियन हो, पर्पज इज़ वन, टू अटेन गॉड, और उसके लिए जो जो अनुकूल है वो करना है। अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के लिए अनुकूल है वो करना है, जो भगवान के लिए प्रतिकूल है वो छोड़ देना है, यही भक्ति का सार है। कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर गॉड सर्विस, एक्सेप्ट इट, व्हाट इज़ अनफेवरेबल, रिजेक्ट इट। जो कोई पढ़ाई करना है, समझो किसी को CET देना है और MBBS एडमिशन लेना है, तो वो क्या करेगा, जो जो उसके पढ़ाई के लिए अनुकूल होगा वही करेगा, जो जो उसके लिए प्रतिकूल होगा छोड़ देगा उसको, बोले मुझे CET में रैंक लाकर मेडिकल में जाना है। जब उसका ऐसा गोल होता है तो वही काम करता है परफेक्टली। उसी तरह से आपको अगर समझ में आया कि मेरा जीवन उसके लिए दिया गया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो फिर मैं वही करूँगा जो उसके लिए अनुकूल होगा, वो नहीं करूँगा जो उसके लिए अनुकूल नहीं होगा। सिंपल प्रिंसिपल है ये, बहुत सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल है। स्मर्तव्यम सततम कृष्णम, विस्मर्तव्यम न जातुचित। ये टॉप मोस्ट प्रिंसिपल है कि सदैव भगवान की याद रखना, उनके लिए जीना और उनको कभी नहीं भूलना। मीनिंग तो सेम है उसका, लेकिन बताया गया है उनको याद करना और उनको नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी, जो देखिए फोटो देखिए सब लोग देखिए, वो ओरिजिनल जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी के हैं, और उसके पीछे जो है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर का शिखर है। वो बड़ा अद्भुत जगह है, वो बहुत बहुत अद्भुत जगह है। वो जो शिखर है ना, शिखर उसमें जो झंडा लगाते हैं ना, वो हर 4 घंटे बदली करते हैं। समझे, आपने स्पॉन्सर किया तो आपका लगाएंगे, आपने आपका लगाएंगे, फिर मेरा लगाएंगे। तो वो एग्जैक्टली जिस तरह से हवा घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूमता है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, हवा ऐसे आ रही, झंडा ऐसे फहरेगा ना इधर उधर, तो वो इधर फहराता है। कोई भी पंछी जो है वो शिखर को क्रॉस करके ऑपोजिट जाता नहीं है, वो गोल घूम के जाता है। मंदिर में शिखर की जो छाया है वो कभी भी मंदिर के जमीन पर नहीं गिरती है। यू कैन गो एंड सी, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भोजन करने को आएगा, वो भोजन का भंडार जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे यात्री अभी उत्सव हो तो बहुत आ रहे हैं, उत्सव नहीं तो कम आ रहे हैं, फिर भी वो फिक्स चावल बनता है 700 किलो का, उनका एक हिसाब है। जितना भी बनेगा उसमें अनंत लोग खा सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अरे आज तो कम पड़ गया, लोग भूखे चले गए। चमत्कार है भगवान का, वो कई चमत्कार है ऐसे उनके, जगन्नाथपुरी के। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो समुद्र किनारे पे है, तो लहरों की आवाज़ तो आपको एक्सपेक्टेड है ना, आनी चाहिए। आपका समझो घर अगर समुद्र किनारे में है, बार बार लहरों की आवाज़ तो आएगी। अगर ट्रेन के स्टेशन के पास में है तो ट्रेन का भी आएगा ना। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को डिस्टर्ब होने लगा तो उन्होंने हनुमान से कहा, ये समुद्र से जाके बोलो आपकी आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। तो आज भी आप जाएंगे ना तो वो 4 गेट है उसके, सिंह द्वार, अश्व द्वार, गज द्वार, 4 दरवाजे हैं भगवान के पूर्व पश्चिम दिशा में। उसके बाहर जाते आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आने लगेगी, जैसे अंदर जाएंगे शांति। ये सब चमत्कार जाके देखना चाहिए। और ऐसे वो एक ही भगवान है, हमारी संस्कृति जो है ना वो इतनी रिच है कि ऐसा कोई एक ही नहीं हमारे पास। नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन हमारे संस्कृति इतनी महान है कि हमारे पास भगवान ने अनंत रूप में लीला किया है। कितना मत्स्य रूप में है, वरा रूप में है, कुर्म रूप में है, वामन रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, परशुराम के रूप में, प्रभु रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में, बलराम जी के रूप में, फिर बुद्ध के रूप में, कल्कि के रूप में, हयग्रीव के रूप में, कितने रूप लिए भगवान ने, जगन्नाथ जी के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, अनंत रूप में लीला किया भगवान ने। तो ये रूप जो है भगवान का, ये जिस साल में आषाढ़ अधिक आता है, मतलब कौन सा साल, 2015, तो लोग याद करो इस साल में आषाढ़ महीना अधिक महीना आएगा। तो जिस साल में आषाढ़ महीना अधिक आता है तब जगन्नाथ जी अपना शरीर बदली करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं इस पूरे विश्व में, कुछ चेंजेस इज बॉडी, नवकलेवरम। अभी वो नवकलेवरम की जो लकड़ी है उसको ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से फोटो आए थे, ढूंढ लिया है। जिस पेड़ पर चक्र का चिन्ह होता है, शंख का चिन्ह होता है, ये सब देखने लायक बातें हैं। हमारा जीवन उसी के लिए दिया गया है, टीवी देखने थोड़ी दिया है, टीवी में क्या देखते हैं। अरे ऐसा पेड़ है जिसमें शंख का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, उसके आगे 3 पर्वत होते हैं, उसके आदमी खाई होती है, उसके आदमी नदी होती है, उसके आदमी सांप बैठा होता है, ऐसे पूरा वर्णन आपको मिलेगा वहाँ पर। फिर वो पेड़ की पूजा करेंगे, फिर उसको पहले सोने की कुल्हाड़ी से टच करेंगे, फिर चांदी की कुल्हाड़ी से टच करेंगे, फिर लोहे की टच करेंगे, फिर उसको एक्चुअली काटेंगे, और काटने के पहले यज्ञ करेंगे, उसको भोग लगाएंगे। फिर सुभद्रा जी का पेड़ मिलेगा, फिर बलदेव जी का मिलेगा, गदा और हल वाला चिन्ह रहेंगे उसके ऊपर। फिर उसको पूरी सागर संगीत पूजा करेंगे, फिर उसको लकड़ी के ही रथ पर, फिर कोई किला नहीं, लकड़ी का ही किला बनाएंगे, और वैसा वहाँ से लेके जगन्नाथपुरी तक लेके आएंगे। और रास्ते में हर गांव में उनकी पूजा करते करते भोग लगाते 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 फिर आएंगे। जब जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे तो बड़ी प्रयोगशाला बनेगी वहाँ पर, और उसके चारों ओर कीर्तन मंडली बैठेगी, ताकि वो जो मंदिर भगवान की मूर्ति बनाने का जो आवाज़ है ना, वो चिजलिंग, वो नहीं आएगा, कीर्तन चलता रहेगा। एक महीने तक अंदर जो है एक ही जाति के लोग हैं, वो खाली भगवान का विग्रह बनाते हैं, एक महीने तक बनता है वो। और उसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ महीना आएगा ना, उसके महीने पूर्णिमा के दिन भगवान सबको दर्शन देंगे। उसके पहले क्या होगा, सॉरी, ज्येष्ठ महीने के चतुर्दशी यानी कि 14th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, उस रात को जगन्नाथपुरी में ऑफिशियली अंधकार किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की जाएगी। और जो चीफ पुजारी है, वो चीफ पुजारी अपने आँखों को बंद करेगा पट्टी लगा के, अपने पूरे हाथ को पट्टी लगेगा पूरी तरह से, कोई शरीर का स्पर्श भगवान के शरीर को नहीं होना चाहिए। और पुराने जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी इस तरफ रखेंगे, और इस तरफ नए जो बनाए गए हैं जगन्नाथ जी के सामने, सुभद्रा जी उनके सामने और बलदेव जी उनके सामने रखे जाएंगे। फिर उनके पेट में एक दरवाज़ा होता है, वो खोलेंगे और नाभि ब्रह्म को पुराने वाले से निकाल कर नए मूर्ति में डालेंगे। वो भी पूरे हाथ को पट्टी बांधी हुई है, यू कैन टच इट योरसेल्फ। ऐसे ही नाभि ब्रह्म को, जैसे वो वर्णन करते हैं कि अगर आपके हाथ में जिंदा खरगोश दिया जाएगा समझो, तो कैसे लगेगा आपको, इज वेरी रेस्टलेस, नो वेरी सॉफ्ट, वेरी रेस्टलेस, एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल। तो ऐसे नाभि ब्रह्म को इनके पेट में से इस पेट में रखा जाएगा, साथ में तुलसी पत्र, चंदन और कुछ सुगंधित फूल भी अर्पण किए जाएंगे और वो दरवाज़ा बंद किया जाएगा। और जब इनको नया बनाया गया था तब उसमें जो फूल तुलसी और चंदन रखा गया है वो आपको वैसे के वैसे ही फ्रेश मिलेगा एज इट इज़, चाहे 19 साल हो गए हो या 12 साल हो गए हो, जैसे भी पंचांग का कैलकुलेशन है, जैसे भी हो गया हो, वो आपको फ्रेश वैसे के वैसे ही मिलेगा तुलसी फूल और चंदन। और 99 में जो कलेवर बदली किया गया था और जो चंदन उसके अंदर था वो मुझे एक पंडा ने दिया जब मैं लास्ट टाइम यात्रा में गया था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, ऐसे बोलेगा दे आपको दूंगा, लेकिन जब मैं जाने लगा जगन्नाथपुरी छोड़कर बम्बई के लिए तो भाग भाग के आया, प्रभु जी मैंने प्रॉमिस किया था आपको ये चंदन आपके लिए, इतनी भाग्य की बात। तो फिर उसके बाद में वो जो विग्रह हैं जो पुराने हैं उनका नाभि ब्रह्म इनमें ट्रांसफ़र किया गया है, उनको जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे बहुत बड़ी जगह है दफन भूमि, उसमें गड्ढे रेडी रहेंगे, उनको उसमें डाल देंगे, बंद कर देंगे। और नेक्स्ट डे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये जो नए विग्रह हैं, अभी इनको नया प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उनको पब्लिक में लाते हैं, एकदम पब्लिक जगह में लाते हैं और वहाँ पर उनको ठंडे पानी से स्नान करते हैं, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक उनको सब पब्लिक आके स्नान कराती है। भगवान का बड़ा इतिहास है, वो भगवान ने जब उनका फर्स्ट अवतार हुआ था भगवान का, तब उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को कहा था मुझे नहलाओ, ठंडे पानी से नहाने के बाद में शाम तक कोई ठंडे पानी से नहाते रहेगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा, सर्दी और बुखार आएगा। तो एज सून एज ही बेज होल डे नेक्स्ट डे ही गेट्स कोल्ड, आपको लगेगा क्या है कहानी बता रहे बच्चों की, हाँ लकड़ी की मूर्ति को उतान किया बुखार आ गया। तो हमारे डॉक्टर हैं, हाँ बहुत सीनियर डॉक्टर है बॉम्बे के, उनका नाम है डॉक्टर अलवा, बड़े भगवान के भक्त हैं वो, तो वो पांडा लोग उनको पहचानते हैं, तो उनको बताया अरे डॉक्टर साहब हमारे कालिया को बुखार आया है। कालिया मतलब कौन, जगन्नाथ भगवान, प्रेम से कालिया बोलते हैं, आओ देखो जरा, देखो आप डॉक्टर हो। उनको लगा अरे चलो ठीक है जाएंगे, और जैसे ही जगन्नाथ जी की मूर्ति को हाथ लगाया ना, उनको चटका लगा उनको जोर से एकदम, तभी वो इतने एक्साइट हो गए, अरे मुझे लगा तो कहानी है, तो जैसा फैक्ट सो हॉट, वहाँ से जो भागे समुद्र किनारे तक गुरु जी के आश्रम तक भागे, बीच रात में राधानाथ महाराज गेट अप प्लीज गेट अप, आई हैव जस्ट टच जगन्नाथ, ही इज हॉट लाइक एनीथिंग लाइक कोल्स। फिर 15 दिन मंदिर बंद रहता है, उनको जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ जो भी होती है ना, बुखार आदमी कैसे रहता है, चावल की गंजी सूप सब खिलाते हैं उनको, दर्शन बंद होता है, ही इज सिक ना, ही इज एडमिटेड, इज बीइंग नर्स्ड, उनकी परिचर्या हो रही है। और फिर लास्ट में जब ही 15 दिन के बाद में फिर आषाढ़ महीना समाप्त होता है, ज्येष्ठ महीना समाप्त होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान किया ना, तो 15 दिन तो ज्येष्ठ महीने का अमावस्या आएगा, 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, फिर द्वितीया को उनका बुखार उतर जाता है। तभी उन डॉक्टर ने डॉक्टर को फिर बुलाया, डॉक्टर साहब आइए ज़रा पेशेंट को देखिए, तो हाथ लगाया नथिंग, नाउ यहां पर आपको लगेगा फिर भी ये कहानी बकवास ऐसा लगेगा, लेकिन जिसने उसको अनुभव किया है उसको क्या बोलेंगे आप? और हमें तो पूरी श्रद्धा है, हमको जाने की जरूरत नहीं टच करने के लिए, वी हैव फुल फेथ, लीला है भगवान की। और फिर भगवान जब 15 दिन बिना दर्शन के उधर बैठे हुए अंदर, उनको बोर हो जाता है, वो कहते हैं कि हमको घुमाने ले चलो, हम भाई और बहन चलेंगे, रथ तैयार करो। तो जैसे इधर वो क्या कहते हैं उसको, अक्षय तृतीया का दिन आएगा, अक्षय तृतीया के दिन रथ बनाना शुरू हो जाएगा। वो फंसी की लकड़ी होती है हाँ, जो 6,000 पेड़ काटने पड़ते हैं उसके लिए, और उसकी रथ बनती है। आपको सुनने में मजा, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस बात का कि इस्कॉन ने जगन्नाथपुरी के पास में एक बहुत कई सैकड़ों एकड़ जगह लिया है गवर्नमेंट के हेल्प से, और गवर्नमेंट को वादा किया है कि हर साल आपको 600 ट्रीज हम तैयार देंगे। कई हजारों पेड़ लगाए वहाँ पर, ऐसा कैलकुलेशन है कि हर एक साल में अक्षय तृतीया में 600 पेड़ फुल्ली ग्रोन होने चाहिए, और वो फिर उसके वहाँ जाके उसका रथ बनता है। वो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा यानी कि आषाढ़ द्वितीया तब तक वो रथ तैयार हो जाता है। पूरा रोड, मेन रोड पे आपको पूरा कॉर्डन मिलेगा, और सब लोग बैठ के उसको, एक जाति के लोग होते हैं वो भी, उनकी सेवा एक ही होती है, रात रथ बनाना। फिर रथ तैयार होता है, भगवान कहते हैं हमको जाना है अभी, तो जब कल जाना है उनको ना, तो हमारे बच्चों को कैसे, कल पिकनिक है, रात को सोचे क्या आज मम्मी 6 बज गए क्या, मम्मी 6 बज गए क्या, अरे बस सो अभी 12 बजे क्या तू उठ रहा है बार बार, फिर एक घंटा उठेगा मम्मी 6 बज गए क्या, तो 6:30 बजे बस आएगा ना पिकनिक का। तो ऐसे हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, रात भर सोते नहीं है, कल जाना है घूमने के लिए, रात भर जगे रहते हैं। और उनको ना वो नारियल का पानी होता है ना, वो डाब कहते हैं, उसके अंदर कपूर डालते हैं, तो वो डालने के बाद में नशा वाला पदार्थ तैयार होता है, वो उनका भोग लगाते हैं उनको, फिर जगन्नाथ को नशा आती है, बड़ी बड़ी आंखें करके सबको मिलते हैं, अपने स्थान से नीचे उतर जाते हैं, जैसे अभी वो स्थान है उनका, वहाँ से नीचे उतरते हैं, लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सबको गले मिलते हैं, सब भक्तों को गले मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कहा गया है कि उस समय जो भी जो कुछ मांगेगा वो उसको पूरा कर देते हैं, तथास्तु। कोई राजा जब भी होता है, राजा जब बड़ा खुश होता है, समझो उसकी बेटी की शादी हो रही है, या उसका राज्याभिषेक है, या और उसका बर्थडे है, तो वो क्या करता है, जो भी कुछ मांगेगा उसको दे देता है उस दिन, इज़ वेरी हैप्पी, इज़ किंग। तो पूरी रात भर भगवान का दर्शन होता है, नो दर्शन क्लोज दैट डे। और नेक्स्ट डे सब लोग सुनो हरे कृष्णा, डोंट गेट डाइवर्टेड, कथा का एक हिस्सा यहाँ से वहाँ हो जाएगा, तो बीच में लिंक लगेगा नहीं आपको बाद में। तो क्या कह रहा था मैं, अगले दिन उनको मंदिर से बाहर निकालते हैं रथ में बिठाने के लिए, तो ऐसे झूलते हुए आपने टीवी पे देखा होगा ना, ऐसे ऐसे झूलते हैं, बड़े नशे से आनंद से निकलते बाहर, और बीच में जगन्नाथ जी रथ में ऐसे ही रुक जाते हैं बीच में। तो भक्त लोग आते हैं, मुरली लेते हैं, अरे कालिया क्या सोने का समय नहीं है, अरे वृंदावन जाना है, उठो उठो उठो, तो मुरली को देखकर तुरंत उठ जाते हैं। ये सब देख आपको देखना चाहिए, इज ऑल फैक्ट। फिर रथ में खड़े हो जाते हैं, फिर रथ खींच के चले जाते हैं। वो जगह जो है उसको वृंदावन माना गया है, गुंडीचा मंदिर कहा गया उसको, वो करीब 10 किलोमीटर का अंतर है। उस 10 किलोमीटर की जगह पे 60 लाख लोग इकट्ठा होते हैं नव कलेवर के साल में, आम साल में 25 लोग होते हैं, 25 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जिस साल में नव कलेवरम होता है उस साल में केवल 60 लाख लोग आते हैं। 1 करोड़ में बोल रहे हैं लेकिन 50-60 लाख का उनका अंदाज है। फिर वहाँ पर रहते हैं, अरे 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 बीच में गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, अरे मिसेस को तो बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, भाई और बहन को लेके चले गए, मिसेस कौन है, मिसेस लक्ष्मी देवी, उनको पता चलता है, अरे कहाँ गए, चले गए विदाउट मी, हाउ डेयर यू। तो 5वां दिन है ना, हेरा पंचमी कहते हैं उसको, हेरा पंचमी, हेरा यानी का देखना, हेरा यानी टू सी, पंचमी यानी पंचमी का दिन। वो दिन वो गुस्से से निकलती है अपने घर से, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, लेट मी सी। तो जैसे ही वो आती है, जगन्नाथ दरवाजा बंद कर देते हैं और एक फूल की माला भेज देते हैं। उसको और गुस्सा आता है, अरे मैं वहाँ तक आई फिर मिलने को भी नहीं आए, अरे कितने बिगड़ गए हैं। तो फिर वो क्या करती है, गुस्से से मंदिर में प्रवेश नहीं करती, वहाँ से बाहर आती है, और जिस रथ में बैठकर जगन्नाथ जी आए हैं उस रथ के आरे तोड़ देती है, और गुस्से से लेफ्ट राइट करके घर पहुंच जाते हैं। देखती जब आएंगे लौट के ना तो देखती हूँ क्यों ऐसा बोल रही वो, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान 56 भोग करते हैं और 56 भोग किचन में बनता है और किचन की इंचार्ज कौन है, लक्ष्मी देवी। कोई बात नहीं, आने दो, आने के बाद देखेंगे क्या करना है इनका। फिर भगवान आनंद लेते हैं वृंदावन में, गुंडीचा मंदिर में 9 दिन रहते हैं, बहुत प्रेम से ब्रजवासियों का प्रेम अनुभव करते हैं और फिर निकलते हैं। जब निकलते हैं तो भी उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है बहुत ज़्यादा आनंद से निकलते हैं लौट के। उस समय कहते हैं कम से कम 25 लाख लोग रहते हैं वापसी की यात्रा में, उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा, बहुड़ा बहुड़ा यानी रिटर्न यात्रा। अरे जगन्नाथपुरी बहुत अद्भुत है, तो जब लौट के आते हैं ना तो उनको लगता है मंदिर पहुंच गए, मंदिर खोल के अंदर जाएंगे, कौन आता है, लक्ष्मी देवी गेट पे आती है, कमर पे हाथ रखती और जैसे ही अंदर घुसने वाले थे दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं उनके, तो नहीं लेंगे आपको, पैर जमीन पर मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो जगन्नाथ जी रोते हैं, अरे गड़बड़ हो गया, तो बहू हमारी नाराज़ हो गई, ये क्या करना है। सब भक्त लोग रोने लगते हैं, अरे जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी, वो रोने लगते हैं क्या करें अभी, माता जी क्या हो रहा है, माता जी बहुत दुखी हो गई है, नाराज़ हो गई है, चली गई है, दरवाज़ा बंद है, तो रास्ते पर हैं, रात भर रास्ते पर रहते हैं। सब लोग सोचते भी क्या किया जाए, इनको नाराज़गी को कैसे निकाला जाए। कुछ लोग भक्ति बोलते हैं आइडिया, क्या बोलते हैं
आइडिया।
फिर वो नक्श सिखांत यानी कि नक्श से लेकर सिख तक भगवान को सोने के अलंकार पहनाते। पता है आपको कितने अलंकार है जगन्नाथ जी के, 1000 किलो केवल जगन्नाथ जी के, ओनली जगन्नाथ 1000 किलो ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि हाथ में कितना है, गले में कितना है, पैर में कितना है, उधर वो लटका हुआ वो कितना है, मुकुट भी सोने का है, उसको कहते हैं शूनावेश, गोल्डन, उड़िया भाषा में सोने को शूना कहते हैं, सोने का वेश पहनाते हैं। इतना सुंदर भगवान को बनाते हैं। अभी देखो समझो कोई दूल्हे को आप समझो सजा रहे हो, उसका शादी है समझो, तो कितना खुश रहेगा वो, लेकिन जगन्नाथ जी को सजाया जा रहा है और वो रो रहे हैं, तो उनको उनको पता नहीं है कि इतना सब करने के बाद मान जाएगी क्या वो इट्स नॉट गारंटीड ना। तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, एक प्लान बनाया, लेकिन प्लान को सक्सेस मिलेगा कि नहीं हु नोज। तो ये ऐसा दूल्हा है, दूल्हा बन रहा है लेकिन दूल्हा बनते रो रहा है सबको पूछ रहे हैं होगा ना, मान जाएगी ना वो, मान जाएगी ना, मान जाएगी ना प्रभु जी, सबको पूछ रहे हैं दोस्तों को। और फिर अगले दिन सुबह क्या हो रहा है बाहर ये देखने के लिए हमारी लक्ष्मी देवी आती है, और जैसे ही उनको देखती है उनका सुंदर रूप देख के पूरा उनका गुस्सा पिघल जाता है, उनका हृदय से प्रेम उमड़ता है उनके लिए, वो इतने गुस्से से आए थे गुस्सा भूल जाती है और तुरंत प्रेम से उनको दरवाजा खोल के अंदर ले जाती है। उसके पीछे पीछे सुभद्रा जी बलदेव जी सर नीचे करके चले जाते हैं, उनको मियाँ बीवी के झगड़े में हमको नहीं पड़ना है इस तरह से लीला है ये पूरी जगन्नाथ जी की, बहुत सुंदर। तो ये द्वारका में प्रकट हुए थे, बहुत किसी और युग में, द्वापर युग में ये अपनी ही कथा सुन के इनके शरीर जो है ना वैसे विचित्र बने हुए थे। आप लोग बोलेंगे इनके पैर है ही नहीं क्या, ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, हाथ में पंजा नहीं खाली ऐसी लकड़ी है, क्योंकि ये महाभाव में हैं, वृंदावन की याद में वृंदावन की कहानी सुनते हुए इनकी ऐसी अवस्था हुई थी। और नारद मुनि जी वहाँ पर आए, उनको देखा तो इतना प्रेम लगा उनको, उनको देख के इतना प्रेम लगा कि बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, अरे मुझे भगवान पर प्रेम है, लेकिन आज जो प्रेम का मुझे अनुभव हो रहा है वो इतना अद्भुत है कि पहले कभी नहीं हुआ था इतना अनुभव। तो उन्होंने भगवान को छुआ, ऐसे भगवान को छूते ही दोबारा नॉर्मल हो गए वो, उनके पैर वैर सब नॉर्मल हो गए। तो नारद मुनि ने उनको वरदान मांगा कि जिस रूप को देखकर मेरे हृदय में इतना अद्भुत प्रेम प्रकट हो गया उसी रूप में आपको वर्ल्ड में दोबारा आना है। क्यों, मुझे लाभ हुआ, सबको लाभ होना चाहिए, नारद मुनि परोपकारी हैं, हाँ जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। अपने को तो मिल गया आनंद, भूलने गए लोगों को, मुझे तो मिल गया आनंद लेकिन सबको मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर आप अवतार लीजिए इसी रूप में, ताकि केवल लोगों को वहाँ पहुँचना है, बस केवल आपको देखना है, आपको देखने से ही प्रेम आएगा हृदय में, भक्ति और प्रेम और जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। और दूसरा काम क्या है, भोजन, आपका प्रसाद जो भी खाएगा वो परिपूर्णता को प्राप्त करेगा। तो जगन्नाथपुरी में केवल दो ही काम करना है, कुछ नहीं करना है, एक तो वहाँ पहुँचना है, हाँ दर्शन करना है दिल भर के, प्रेम से एकदम, आंखें बड़ी बड़ी करके, और उनका प्रसाद खाना है, बस दो चीज़ करेंगे ना आपका जीवन धन्य हो गया। तो वो जगन्नाथ जी घर पे आए हैं तो स्वामी के रूप में उनकी सेवा करना है, हम मैं दास आप स्वामी। तो कल हनुमान जयंती, आपको पता है टुमारो इज हनुमान जयंती, तो हनुमान की और जगन्नाथ की साथ में कथा है, बहुत सुंदर। वो ऐसा है कि जगन्नाथ जी जब ही उनका मंदिर बना ना, तो वो समुद्र जो है ना इतना, अभी आज भी जाएंगे ना आप समुद्र, जगन्नाथ जी का समुद्र बहुत अकराल विकराल है, वो वेरी एजिटेटेड, उसकी लहरें इतनी भयंकर होती है। तो वो आए दिन जगन्नाथपुरी को फ्लड करते थे, पूरी बाढ़ जो है घरों के अंदर जा रही है, सब परेशान जगन्नाथपुरी वासी, आप पैर छोड़ सकते हैं बिल्ली। तो फिर सब लोग परेशान हो गए, जगन्नाथ जी को कंप्लेंट किया उन्होंने, तो जगन्नाथ जी ने क्या कि हनुमान जी को बुलाया। अभी हनुमान जी कैसे है उस समय, हनुमान जी को चिरकाल जीवन का वरदान है। जब प्रभु रामचंद्र निकल जा अयोध्या में जा रहे थे ना, और फिर इस अयोध्या से फिर परम अयोध्या को जाने लगे, सब भक्त लोग परम गति को प्राप्त हो गए, तो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि आप यहीं रहो, जहाँ जहाँ राम मतलब मेरी कथा चलती रहेगी वहाँ वहाँ आप प्रकट होना, जब तक पृथ्वी पर राम कथा मेरी कथा चलती रहेगी तब तक आप रहना। तो रह गए, तो थे दुनिया में वो, तो स्मरण करके भगवान ने आह्वान किया और कहा कि आपसे समुद्र बहुत डरता है, क्योंकि तो बलशाली है ना हनुमान जी, तो आप समुद्र के किनारे खड़े होना और समुद्र को ये सीमा के आगे आने मत देना, मेरी प्रजा जो जगन्नाथपुरी की है उनको आराम से रहने दो। तो जैसे आगे खड़े हो गए वो, समुद्र उधर ही रह गया, आगे नहीं आया, ठीक है कैन फॉरवर्ड। अभी समझो आपको एक सेवा दिया है कि आप खड़े रहो, पर आप खड़े हो गए, समुद्र अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पे हो, आपको बोर तो हो जाएगा ना, अभी काम तो कुछ नहीं, खाली खड़े रहना है, मतलब समुद्र तो वैसे भी आगे नहीं आ रहा है और इधर तो दाल चावल खिला रहे। अभी हनुमान जी को क्या अच्छा लगता है, नहीं आइडिया, लड्डू, उनको सीता मैया की याद आती है, जब मैं सीता मैया के पास था तो कितने अलग अलग प्रकार के लड्डू मुझे खिलाते थे, इतने सुंदर सुंदर लड्डू खिलाते थे। दाल चावल खा के बोर हो गया, एक काम करता हूँ, अभी बहुत दिन से तो समुद्र आगे तो आए नहीं जब से मैं आया हूँ, अब मैं एक छलांग लगाता हूँ, यहाँ से सीधा अयोध्या पहुँचता हूँ, मैया मेरी वहाँ पर एक अच्छा फर्स्ट क्लास भोजन करता हूँ, आ जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाया, समुद्र सब लोग सो रहे थे, अचानक सब लोग हाय हाय करके उठे, कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है, सब भागने लगे, हनुमान जी है ही नहीं। तो रात भर हाहाकार मचता रहा, सब लोग हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ है, ढूंढ रहे, हनुमान तो है ही नहीं वहाँ पर। तो नेक्स्ट डे हनुमान सुबह वापस छलांग लगाते हैं, जैसे छलांग लगाते हैं समुद्र पूरा भागता है पीछे। तो सब लोग जो जगन्नाथ कंप्लेन करते हैं, अरे जगन्नाथ जी चले कैसे गए, हनुमान जी चले कैसे गए, इट्स नॉट गुड। तो भैया हनुमान जी का उधर कोर्ट कचहरी हो गया, हाउ यू वेंट, हाउ कैन यू गो, यू नो वॉट हैपन टू अस, हाउ वी सफर्ड। तो जब फिर बोला आपको किस कहना है, आप बताओ अपनी सिफारिश में क्या बोलेंगे आप, उन्होंने कहा आप लोग मुझे, हमको खाली दाल चावल खिलाते हो, हमको जमता नहीं है, वो बहुत पोर होता है। तो जगन्नाथ ने वादा किया कि आज से जो 56 भोग मुझे लगेगा, लगते ही पहले आपको लगेगा। 56 भोग उनको एक टाइम लगाते नहीं है, दिन भर मिलके 56 आइटम लगाते हैं, लेकिन एक एक आइटम जो है ना वो अंडे अंडे भर के होते हैं, ऐसा प्लेट में नहीं वाटो भी नहीं होता है, 56 आइटम खिलाते हैं दिन भर में, और वो बड़े बड़े वैसे बैलगाड़ी होती है ना, वैसे बैलगाड़ी में लेके जाते हैं, मट्टी के पात्र में, मट्टी के पात्र में होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है वो, बहुत स्वादिष्ट, उसको पाना ये जीवन का भाग्य है पूरा। तो वो फिर आज भी, और फिर और एक काम किया लोगों ने, जहाँ हनुमान जी खड़े हैं उनको पैर को साखड़ी लगा दिया, बेड़ी लगा दिया कि जाए नहीं वापस के, हाँ तो उसका नाम क्या पड़ा, बेड़ी हनुमान। आज भी समुद्र किनारे खड़े हैं वो, ऐसे खड़े हैं, पाँव पुजारी को बोलेंगे थोड़ा सा तो धोती ऊपर करके आपको दिखाएंगे, साखड़ लगाए हुए उधर जगन्नाथ जी, ऐसे ही जगन्नाथ जी हमारे, बहुत सुंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कलयुग में भक्त बनकर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल गुजारे, अपने जीवन की लीलाओं का अंतिम लीला जो है वो उन्होंने वहाँ पर बिताया 18 साल। तो बहुत सुंदर सुंदर कहानी है, कि जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत हैं, उनका दर्शन करने के लिए आप लोगों को जाना चाहिए। अब जो जाके आएंगे तो उनकी याद में हाँ उनकी सेवा करनी चाहिए। जगन्नाथ जी का एक ही है सेवा, मतलब अच्छा भोजन कराओ बस। फिर दिन में एक आरती दो आरती जो भी आपकी इच्छा है वो आप करो अपनी क्षमता के अनुसार, प्रेम से करो, उनसे वादा करो। लेकिन पहले आप क्या कर सकते हो, चलो मैं दिन में एक आरती करूँगी, तीन बार भोग लगाऊंगी, जो भी कुछ है, एक बार सुबह जगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, फिर जब समय मिलेगा तो दो बार आरती करूंगी, जो भी आपके आगे। लेकिन प्रॉमिस करना है उनको आपको, क्योंकि वो लकड़ी नहीं है, स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है वो। जैसे आप उनको देखेंगे वैसे आपको दर्शन देंगे। आप बोलेंगे लकड़ी है तो आपको लकड़ी दिखाई पड़ेगी, आप बोलेंगे भगवान है तो आपको रोज़ अलग दिखाई पड़ेंगे, आपको मैसेज भी देंगे, दे विल कम्युनिकेट विथ यू। सारे अनुभव की बातें हैं, हाँ लेक्चर की बातें नहीं है, यू हैव टू एक्सपीरियंस। क्योंकि ये छह तत्वों में से एक तत्व है विग्रहों की सेवा करना, भगवान की, भगवान से ऐसी सेवा करना कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इज अ मेंबर ऑफ आवर हाउस। आपके बेटे की कैसी सेवा करते हो आप, हाँ उसको देखते हो ना, कभी उठ रहा है, कभी सो रहा है, अभी सो, अभी उठेगा, अभी तो नाश्ता रेडी रखो उसका, कितना सारा देखना पड़ता है, अभी बैग भरो, स्कूल भेजना है उसको, स्कूल से लाना है, फिर सुलाना है, अभी नींद आ रही है, अभी बुखार आ गया, दवा देनी है, डॉक्टर को दिखाना है, कितना पर्सनली काम करते हैं हम लोग, हाँ घर में अपने मेहमानों को या अपने परिवार के सदस्यों को संभालने में। वैसे ही आप आज से आपके घर में तीन परिवार के सदस्य जुड़ गए हैं, दे विल स्टे विथ यू एंड यू विल सर्व देम एज योर मास्टर्स, एज योर नाथ, और वो आपको उसके बदले में बहुत प्रेम देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन धन्य करेंगे। आपके जीवन में क्या चाहिए आपको, अरे वो मत मांगो उनसे जो समय के साथ समाप्त हो जाता है ना, पैसा मांगेंगे तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, बोले मुझे जवान बना दो दोबारा, फिर कुछ समय के बाद में बूढ़े हो जाएंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे तो कुछ दिन बीमार हो जाएंगे, लंबी आयु मांगेंगे फिर भी एंड में मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान से ऐसे समय के साथ समाप्त होने वाले वस्तु को मत मांगो, भगवान से वो मांगो जो समय के साथ समाप्त नहीं होता है, और वो क्या है, प्रेम और भक्ति मांगो। और भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, जो मेरा भक्त है, मेरे शरण में आया है, उसका सारा मैं देखता हूँ। क्या कहते हैं, योग और क्षेम, मतलब क्या, जो उसके पास है उसको बनाए रखता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो देता हूँ। वॉट एवर यू लैक आई विल गिव, वॉट यू हैव आई विल प्रिजर्व। योगक्षेमम वहाम्यहम, अनन्यश्चिंतयन्तो माम योजनों पर उपासते, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मेरे लिए जीता है, उसका जीवन मेरे लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसका जो योगक्षेम है वह मैं संभालता हूँ। ही डजंट हैव टू वरी। जैसे आपके बेटे को कुछ चिंता करनी पड़ती क्या, मम्मी पैंट छोटी हो गई है, नहीं कभी आएगी, मम्मी जूता भी टाइट होने लगा है, मैं बैग भी छोटे पड़ने लगे हैं, अरे वो बोलने के पहले ही तैयार रहता है, वो अगले साल में बिफोर गोइंग टू न्यू ईयर स्कूल नए जूते नई बैग सब कुछ रेडी रहता है। अरे वो तो बोलने वाला बच्चा है, जब छोटा सा होता है तभी क्या होता है, मम्मी कितनी कम लंगोटी है मेरे पास, चार ही है, बार बार भेजती रहती है, अरे चार क्या 40 तैयार रहेगी आपके लिए। बिफोर यू टेक बर्थ ऑल रेडीनेस इज देयर, आने के पहले ही सब लंगोटियाँ सब खरीदारी तैयारी रहती है, आएगा अभी। कितना प्रेम से हम देखते हैं, तो वही प्रेम जो है वो भगवान से ऊपर भी होना चाहिए। जब वैसा प्रेम हमारे परिवार के सदस्यों की तरह भगवान से होगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, लाइफ विल बी परफेक्ट। और ये जीवन उसी के लिए दिया है। अभी ये फिल्म स्टारों की कहानी सुनेंगे और जगन्नाथ की कहानी नहीं सुनेंगे तो जीवन में क्या है। इतनी अद्भुत कहानी मैंने आपको बताई, 50 बार बता चुका हूँ, और फिल्मी स्टोरी होगी ना किसी लव अफेयर की, एक बार सेकंड टाइम बोर हो जाऊँगा बताने के लिए, नेक्स्ट टाइम बताने का दिल भी नहीं होगा, इतना वो कचरा पट्टी कथा है। लेकिन ये कथा मैं आज तक 500 बार बता चुका हूँ, भी तुरंत वापस रिपीट भी कर सकता हूँ विद सेम प्लेजर एंड हैप्पीनेस, क्योंकि वो दिव्य कथा है। उसको सुनने से आत्मा की शुद्धि होती है, उसमें सुनने से आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, दैट इज द बेनिफिट। कथा कथा में अंतर क्या होता है, कुछ कथाएं जीवन में बांध देती है जन्म मृत्यु के चक्र में, और भगवान की कथाएं जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देती है। हमारी मेन परेशानी क्या है, अरे पैसा नहीं है, लोन बहुत है, ये हमारी मेन समस्या नहीं है, हम लोग मरने वाले हैं, That is the biggest problem in life. We are going to die one day. Whether we are rich or poor, death will be definitely coming. तो वो हमारी मेन समस्या है और वो समस्या को हमारे जगन्नाथ जी बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की, सब लोग मुड़ जाओ, दर्शन करो, देखो ना सुंदर श्रृंगार करके दर्शन दे रहे हैं। जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। अरे हमारा जो भी भोग लगाया हुआ है उनके लिए क्या है, एक हाथ से खा सकते हो, लेकिन वो ये देखते नहीं है कि कितने आइटम लगाए, कि चार ही पूरी लगाए कि पांच ही पूरी लगाई, अरे पेट भरा ही नहीं, ऐसा देखते नहीं है। उसके अंदर कितना प्रेम है उसको चखते हैं वो। हम सब लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे वो करेला अच्छा लगता नहीं है, मुझे वो आप गुलाब जाम दे दो। भगवान वो देखते नहीं है, भगवान केवल देखते हैं कि कितने प्रेम से कितना आइटम बनाया है, और आपके आइटम के अंदर जो प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं वो। चाहे आप चार लगाओ, पांच लगाओ, पचास लगाओ, छप्पन लगाओ, जैसे आपकी मर्जी हो, 112 लगाओ, लेकिन वो प्रेम के भूखे हैं, सबको प्रेम देते हैं, सबसे प्रेम लेते हैं। वो जो बड़ी बड़ी आँखें हैं ना जगन्नाथ जी की, देखो जगन्नाथ जी की आँख में एकदम गौर से देखो, दो काली पुतलियाँ हैं ना, उसके बाद में सफ़ेद जगह है, उसके बाद में एक लाल बॉर्डर है, दिखाई पड़ रही है। कभी आप अपने बच्चे को गोद में लेकर बड़े प्रेम से देखते हो ना, तो भी आपके आँख में भी लाल बॉर्डर बन जाती है। कभी आप स्टडी करो अपने आप को, या किसी और को स्टडी करो। जब किसी को आप बड़े प्रेम से निहारते हो, बड़े प्रेम से, तब आपके आँखों के बॉर्डर में लालिमा उत्पन्न होती है। ये जगन्नाथ जी की आँखों में परमानेंट लालिमा होती है, क्योंकि आने वाले सभी भक्तों को बड़े प्रेम से निहारते रहते हो। जैसे आप उनको देख रहे हो प्रेम से, वैसे वो भी आपको प्रेम से निहारते हैं। जब आपकी नज़रें मिल जाती है तो आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। इसलिए अब उनको पूछते हैं, उनको पुकारते हैं, और आपके भाग्य से जो अभी फोटोग्राफ में वस्त्र पहना हुआ है वो ही शूनावेश है। गौर से देखो, उनको जो मुकुट है वो सोने से बना हुआ है, गले में हार देखो वो सोने का बना हुआ है, हाथ में जो अलंकार पहने हैं, नाक के ऊपर एक लटका हुआ अलंकार है, वो सभी सोने का बना हुआ है। और यही रूप देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गई थी, उनका गुस्सा पिघल गया था, उन्होंने बड़े प्रेम से उनको अपने घर में वापस प्रवेश दिया था। तो बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।